आज तो लिखना ही लिखना है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल ईमानी, किताबुल ईमान शुरू हुआ तो अब यहाँ पर ईमान की तारीफ लुगवी, ईमान की तारीफ इस्तिलाही। ईमान के लवाजिमात, ईमान के दरजात, बहुत से उमूर हैं। पहले उमूर की एक इजमाली फहरिस्त बना लो। पहला उन्वान है ईमान की लुगवी और इस्तिलाही तारीफ। दूसरा उन्वान है ईमान के लवाजिमात और ईमान के दरजात। तीसरा उन्वान है इस्लाम की लुगवी और इस्तिलाही तारीफ। चौथा उन्वान है ईमान और इस्लाम में निस्बत। उसी के ज़ेल के अंदर है ईमान अफजल है या इस्लाम अफजल है। पांचवा उन्वान है ईमान के सिलसिले में मुख्तलिफ फिरकों के अकाइद और उनका तआरुफ। छठा उन्वान है ईमान बसीत है या मुरक्कब। और इस इख्तिलाफ की हकीकत क्या है। छठा उन्वान है सातवां उन्वान है तस्दीक कल्बी, इकरार बिल लिसान वगैरह के अहकाम। आठवां उन्वान है अल ईमानु यजीदु व यनकुसु, उसका खुलासा। नौवां उन्वान है अन मुमिनुन इंशा अल्लाह का हुक्म शरई। और दसवां उन्वान है ईमान और इस्लाम के सिलसिले में हज़रात मुहद्दिसीन और हज़रात मुतकल्लिमीन फुकहा के दरमियान में इख्तिलाफ। तिलका शरतुन कामिला। दस उन्वान को समझना है, अब एक एक उन्वान समझते जाओ। ईमान की लुगवी तारीफ। नंबर एक, अमीन या अमनु बाबे समी यस्माऊ से आता है, जिसका लुगवी माना आता है किसी चीज से बेखौफ होना। इसलिए कहा जाता है अल मुमिनु मन अमीनहुन नास, मोमिन वो हैं जिससे लोग अपनी जान और माल के बारे में बेखौफ हो। नंबर दो, जब इसको बाबे इफ़आल में ले जाएंगे तो मुतादी हो जाएगा। और आमना का माना आता है अमन देना, बेखौफ कर देना। नंबर तीन, ईमान के लुगवी माने तस्दीक के भी आते हैं, लेकिन ये मंतिक वाली तस्दीक नहीं है, तस्दीक तसव्वुर वाली है। यहां तस्दीक का क्या माना? आमना बिकज़ा, जब इसका सीला बा आए तो तस्दीक कर दी, यानी तकजीब से अमन हासिल हो गया। तस्दीक कर दी यानी तकजीब से अमन हासिल हो गया। जिसकी तस्दीक की जाए वो अपनी तकजीब से बेखौफ हो जाता है। इस्तिलाह शरीयत में तस्दीक का माना है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद और एतबार की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई बातों को सच्चा मानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद और एतबार की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई बातों को सच्चा मानना, ये तस्दीक की इस्तिलाही तारीफ हो गई। अब ईमान की शरई और इस्तिलाही तारीफ समझो, ये हो गई ईमान की लुगवी तारीफ है। उसमें जो तीसरी तारीफ आई वो तस्दीक की इस्तिलाही तारीफ भी हो गई, और वही समझो कि मिन वजहिन ईमान की भी एक तारीफ है जो तस्दीक की तारीफ है। अब ईमान की इस्तिलाही तारीफ समझो। नंबर एक, अल्लाह के नबियों ने जो ऐसी हकीकतें बतलाई जिनको हम हमारे हवास और इदराक इदराक के आलात से मालूम नहीं कर सकते, जिनको हम हमारे हवास और इदराक के आलात से मालूम नहीं कर सकते। दूसरी बात, अल्लाह के नबियों ने अल्लाह की तरफ से इल्म हिदायत जो हमको पहुंचाया उन सब को सच मानना, और पहुंचाने वाले नबियों को भी सच्चा मानना है। तीसरी बात, अल्लाह के नबी अल्लाह के यहाँ से कतई बदीही जरूरी जो बातें हमारे लिए लेकर आए उनको हक जानकर कबूल कर लेना। जितनी बातें इजमाली है उस पर मुजमल ईमान लावे, जितनी बातें तफसीली बतलाई उस पर मुफस्सल ईमान लावे। और ये दोनों चीजें हम मकतब से ईमान मुजमल और मुफस्सल के उन्वान से पढ़ते हैं। इनका मुख्तसर खुलासा, नंबर एक, अल्लाह की वहदानियत ज़ात और सिफात पर ईमान। नंबर दो, रिसालत का इकरार। नंबर तीन, बास बादल मौत का इकरार। रिसालत को मानना, इकरार नहीं, रिसालत को मानना। नंबर तीन, बास बादल मौत को मानना। नंबर चार, आसमानी किताबों को मानना। नंबर पांच मलाइका पर ईमान। किताबों पर आ गए, आसमानी किताबों। नंबर छह तकदीर पर ईमान। नंबर सात हिसाब किताब जन्नत जहन्नम पुल सिरात पर ईमान। और इन तमाम का मुख्तसर खुलासा कलिमे तय्यबा और कलिमे शहादत में है। यहां एक नोट लिख लो, जरूरियात दीन का सबूत तवातुर से होता है। ये हो गई ईमान की लुगवी और इस्तिलाही तारीफ। अब ईमान के लवाजिमात के मुतालिक चंद बातें लिख लो। नंबर एक, ईमान के लिए इस्तिमरार शर्त है। एक लम्हे के लिए भी इनकिता मुनासिब नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि भाई आखिरी लम्हे तक अल्लाह ईमान पर बाकी रखे तो पूरा वक्त इंसान का ईमान पर इस्तिमरार हो, एक लम्हे के लिए भी ईमान से इनकिता न हो। नंबर दो, ईमान शरई का ताल्लुक गैब से है। नंबर तीन, ईमान हासिल करने के लिए कस्द और इख्तियार को मुतवज्जे करना पड़ेगा। नंबर चार, नबियों ने जो ईमानियात बतलाए उसको हक मानते हुए दिल में रासिख और पुख्ता कर ले। नंबर पांच, पांच, ईमान का इब्तिदाई दर्जा यह है कि इंसान आमाल भी करे। लेकिन शरीयत ये चाहती है कि आमाल हाल बन जावे। और उसी को कहते हैं कि शरीयत तबीयत और मिजाज बन जावे। और वो आमाल पर कसरत से मुदावमत की बरकत से हासिल होगा। दो उन्वान हो गए। पहला उन्वान था ईमान की लुगवी और इस्तिलाही तारीफ, दूसरा उन्वान था ईमान के लवाजिमात। अब तीसरा उन्वान क्या है? इस्लाम की लुगवी और इस्तिलाही तारीफ। इस्लाम की लुगवी और इस्तिलाही तारीफ। इस्लाम का लुगवी माना आता है नंबर एक झुक जाना, दूसरा माना आता है खुद को किसी के सुपुर्द कर देना, तीसरा माना आता है किसी का ताबे और फर्मा बरदार हो जाना, इस्लाम की इस्तिलाही तारीफ। नंबर एक, अल्लाह ताला की नाजिल की हुई शरीयत को जिंदगी का दस्तूर बना लेना, नंबर दो, अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो इंसान कुल्ली तौर पर खुद को अल्लाह के हवाले कर देवे, नंबर तीन, अल्लाह के हुक्म के सामने जाती मफाद न देखें, अकली दलील तलब न करें, मिसाल बहुत अच्छी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकिया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। फिर क्या फरमाया? फलम्मा अस्लमा, देख लिया कि अल्लाह का हुक्म आया, हालांकि हुक्म मनामी था, हुक्म जाहिर भी नहीं था, मलक के जरिए भी नहीं था, बस मनाम में। अंबिया अलैहिस्सलाम का मनाम और ख्वाब भी वही हुआ करता है, लेकिन ख्वाब में हुक्म आया फलम्मा असलमा, दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लिम खम। तो इसी को कहते हैं इस्लाम। अब उन्वान है ईमान और इस्लाम में निस्बत कौन सी? हजरत नंबर एक, पहला मसलक, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ईमान और इस्लाम दोनों को मुतरादिफ बतलाते हैं। दलील किया, हमको कैसे समझ में आया? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल ईमान कायम किया और बुनियल इस्लाम अला खमसिन वाली हदीस लाए। इससे समझ में आया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ईमान और इस्लाम दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। यहाँ एक नोट और लिख लो इमाम बुखारी के मसलक के बारे में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ईमान, इस्लाम, दीन, तक्वा, ये सब मुतरादिफ अल्फाज हैं। गरचे हम भी ये कहते हैं कि इन सब में आपस में गहरा ताल्लुक है, इसीलिए नुसूस में एक दूसरे पर तवस्सुअन इतलाक कर दिया जाता है। तवस्सुअन इतलाक कर दिया जाता है यानी ईमान बोल के इस्लाम, इस्लाम बोल के ईमान, तकवा बोल के ईमान, ईमान बोल के तकवा, दीन बोल के ईमान, ईमान बोल के दीन, क्योंकि आपस में गहरा रब्त है इसकी वजह से। हालांकि हकीकत में सब में फर्क है। इसकी मिसाल कुरान मजीद से भी ले लो। फाखरजना मन कान फीहा मिनल मुमिनीन फमा वजदना फीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन। सूरे ज़ारियात है ना, सूरे ज़ारियात आयत नंबर 35-36। फखरजना मन कान फीहा मिनल मुमिनीन फमा वजदना फीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन। अब देखिए मोमिनिन का लफ्ज भी आया, मुस्लिमिन का लफ्ज भी आया, तवस्वान है, इसमें तरादुफ हुआ है। नंबर दो, दूसरा मसलक, ईमान और इस्लाम के दरमियान में तबायुन है। इस्तिलाही एतबार से लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम हैं। कोई ईमान इस्लाम के बगैर मोतबर नहीं और कोई इस्लाम ईमान के बगैर मोतबर नहीं। کوئی ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں اور کوئی اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں. گرچہ دونوں میں جدائی ہے, دونوں الگ الگ چیز ہیں, دل میں تصدیق ہو اس کو ایمان کہتے ہیں, دل میں تصدیق ہو اس کو ایمان کہتے ہیں, اور زبان سے اقرار اور ظاہری اطاعت کو اسلام کہا جاتا ہے. دل میں تصدیق ہو اس کو ایمان کہتے ہیں, اور زبان سے اقرار اور ظاہری اطاعت کو اسلام کہا جاتا ہے. اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. سورہ حجرات آیت نمبر 14. حدیث شریف میں ہے, الاسلام علانیت والایمان فی القلب. الاسلام علانیت والایمان فی القلب. تیسری مثال حدیث شریف میں, مشکات شریف میں آپ حدیث جبرائیل پڑھ چکے ہو, ابھی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں سوال دو الگ الگ ہوئے ہیں, ایمان کے بارے میں الگ سوال ہوا, اسلام کے بارے میں الگ سوال ہوا. اگر دونوں ایک ہوتے تو الگ الگ سوال کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں, ایمان کے بارے میں بھی الگ سوال ہوا, اسلام کے بارے میں بھی الگ سوال ہوا. معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ چیز ہیں. اگر دونوں الگ نہ ہوتے تو سوال کی کوئی ضرورت ہی نہ رہتی. دوسرے مسلک کا خلاصہ یہ ہوا کہ شریعت کو دل سے ماننا ایمان ہے, ظاہری اطاعت کا نام اسلام ہے. شریعت کو دل سے ماننا ایمان ہے, ظاہری اطاعت کا نام اسلام ہے. نمبر 3, تیسرا مسئلہ, بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ایمان اور اسلام میں تداخل ہے. مثال حدیث شریف میں سوال کیا گیا ایل اسلام افضل ایل اسلام افضل, تو جواب میں کہا گیا قال الایمان باللہ الی آخرہ, تو اس میں گویا تداخل بتلایا گیا, نمبر چار. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ایمان تصدیق قلبی اور اسلام محض اقرار لسانی, بہرحال یہ چار میں سے تین باتیں اور تین میں سے بھی دو باتیں زیادہ اہم ہیں کہ ایک مسلک ہو گیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ ترادف کے قائل ہیں, مترادف مانتے ہیں, اور دوسرا مسلک ہو گیا تباین کا, ایمان اور اسلام کے درمیان کے اندر تباین. اس کے بعد کیا عنوان ہے, کون افضل ہے, یہی عنوان ہے نا, ایمان اور اسلام کے اندر کون افضل ہے. تو سمجھو عنوان, ایمان اور اسلام میں افضل ایمان ہے, یہ راجح قول ہے. اگرچہ اسلام بھی انسان کی ایمانی زندگی کے لیے ضروری ہے, اگرچہ اسلام بھی انسان کی ایمانی زندگی کے لیے ضروری ہے, کے بعد کیا عنوان ہے, ہاں یہ تو اب یہ جو کمپوز کر کے دیا ہے اس کو کل زیروکس کروا لو, پھر اس کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے, ہر ایک کے سامنے کاپی ہو تو لکھنا نہ پڑے. یہ مختصر خلاصہ مرتب کر کے اسی لیے کمپوز کیا ہے تاکہ لکھنا نہ پڑے, اسی کو ڈائریکٹ سمجھ لینا. جی اس کے بعد کیا عنوان ہے, ہاں یہ اہم ترین عنوان, ایمان بسیط یا مرکب. بسیط تو سمجھتے ہو نا اصطلاح, بسیط جس کے اجزاء نہ ہو, مرکب جس کے اجزاء ہو. تو ایمان کے بسیط اور مرکب ہونے کے سلسلے کے اندر بڑا نازک مسئلہ ہے. نمبر ایک, حضرات محدثین کا مسئلہ, اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسئلہ ہے, ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ایمان مرکب ہے. ایمان کے تین اجزاء ہیں, नंबर एक तस्दीक बिल जीनान, यानी दिल से सच्चा मानना। नंबर दो इकरार बिल लिसान, नंबर तीन अमल बिल अरकान, यानी जाहिरी आज़ा से अमल करना। दूसरा मसलक है मुतकल्लिमीन, फुकहा, यूं भी कह दो हनफिया का। ईमान बसीत है, यानी तस्दीक कल्बी का नाम ईमान है। अगरचे ईमान की तकमील के लिए आमाल भी ज़रूरी है, और किसी को ज़ाहिर में मुसलमान करार देने के लिए ज़बानी इकरार भी ज़रूरी है। किसी को ज़ाहिर में मुसलमान करार देने के लिए ज़ाहिर में इकरार भी ज़रूरी है। दो अलग अलग मसलक समझ में आ गए। मुहद्दिसीन हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ईमान को मुरक्कब मानते हैं। कौन कौन से अज्ज़ा? तस्दीक बिल जिनान, इकरार बिल लिसान, अमल बिल अरकान, और मुतकल्लिमीन फुकहा और हनफिया क्या कहते हैं? ईमान बसीत है। लेकिन साथ में क्या कहते हैं? ईमान की तकमील के लिए आमाल की भी ज़रूरत है, और किसी को ज़ाहिर में मुसलमान बतलाने के लिए इकरार भी ज़रूरी है। अब यहाँ चंद अहम नोट्स लिख लो इनके इख्तिलाफ के ऊपर। पहली नोट, हजरात मुहद्दिसीन किराम अमल को ईमान के लिए जुज़्वे तज़यीनी मानते हैं। ताज़ा या तज़यीन, ज़ीनत, जुज़्वे तज़यीनी मानते हैं। कि जिस तरीके से दरख्त है उसकी जड़ है, उसका तना है, उसके ऊपर शाख और पत्ते हैं, तो ये पत्ते और शाख से दरख्त की जीनत है। پتے اور شاخ نہیں ہوں گے تو بھی نفس درخت کا وجود ہوگا. دوسری نوٹ لکھو. حضرات محدثین کے یہاں عمل جزو ہے ایمان کامل کا. جبکہ فقہا متکلمین احناف کے یہاں عمل نفس ایمان کا جزو نہیں ہے. عمل نفس ایمان کا جزو نہیں ہے. تیسری نوٹ لکھو. ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی عمل کرے. ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی عمل کرے. صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اس لیے بعض موقعوں پر ایمان کا اطلاق اعمال پر ہوا ہے. اس لیے بعض مواقع پر ایمان کا اطلاق اعمال پر ہوا ہے. اور ایمان اصل ہے, اعمال اس کی فرع ہے. چوتھی نوٹ لکھو. اعمال ایمان کے لیے مکملات ہیں. اعمال ایمان کے لیے مکملات ہے. جیسے دیوار کے اوپر کلر, ورنہ اینٹ اور کانکریٹ رکھ دیا تو دیوار ہو گئی, لیکن پلاسٹر اور کلر سے دیوار تکمیل پر پہنچے گی. پلاسٹر اور کلر مکملات ہے دیوار کے واسطے. اسی طریقے سے اعمال ایمان کے لیے مکملات ہیں. پانچویں نوٹ لکھو. ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضرات محدثین اور فقہا کے درمیان اختلاف صرف لفظی ہے. حقیقتاً کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. اس کو تعبیر کا فرق بھی کہہ سکتے ہیں. सातवीं बात, छठी बात, ये जमाना और मकाम के तकाजों से इख्तिलाफ हुआ है। हसरात मुहद्दिसीन का मुकाबला मुर्जिया फिरके से हुआ है। हजरात मुहद्दिसीन का ज्यादातर मुकाबला मीम रा जीम हमजा छोटी हा मुर्जिया फिरके से हुआ। और मुर्जिया फिरके के लोग आमाल की हैसियत घटाते हैं, मुर्जिया फिरके के लोग आमाल की हैसियत को घटाते हैं। गुनाह को मुजीर नहीं मानते, इसीलिए हजरात मुहद्दिसीन ने आमाल को ईमान का जुज्व बतलाया। अहनाफ का मुकाबला हुआ मोतजिला और खवारिज से। अहनाफ का मुकाबला हुआ मोतजिला और खवारिज से। वो हर वक्त ये प्रोपीगंडा करते थे, आमाल ईमान का जुज्व है, आमाल ईमान का हकीकी जुज्व है। आमाल छोड़ने से इंसान इस्लाम से निकल जाता है। गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब करने से आदमी ईमान से निकल जाता है। इसलिए अहनाफ ने आमाल को ईमान का जुज्वे लाजिम नहीं माना। यूं लिखो, इसीलिए अहनाफ ने आमाल को ईमान का जुज़े लाजिम नहीं माना। समझे भाई? कुछ बात समझ शरीफ में आई? ये है भाई ईमान, इस्लाम और इस सिलसिले के अंदर कुछ बुनियादी बातें। देखिए, यहां बहुत तवील तवील बातें शुर्राह ने की है, लेकिन आपको निहायत मुख्तसर जरूरी जितना लगा इतना खुलासा अर्ज कर दिया गया है। दलाइल वगैरह किताबुल ईमान में जा बजा आते रहेंगे। और दलाइल का मसला ऐसा है, सब कब्रिस्तान चले गए, सिर्फ दलाइल से मुहाकमा करके ये रुजू करके इधर आ जाएगा, ये रुजू करके इधर आ जाएगा, वो मौका है नहीं। क्या हम अहनाफ के दलाइल इतने जोरदार पेश करें कि मुहद्दिसीन रुजू कर ले, मुहद्दिसीन के दलाइल इतने जोरदार पेश करें कि अहनाफ रुजू कर ले, मुतकल्लिमीन रुजू कर ले, सब कब्रिस्तान चले गए। इसीलिए इतना ज्यादा जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक के मसलक अपनी अपनी जगह लेके लोग कब्रिस्तान गए हैं, इसीलिए इतनी जरूरी कुछ बुनियादी बातें बतला दी। इसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, बार बार इसको आज देख लो, ताकि आपको किताबुल ईमान के अंदर तकलीफ न होवे। और जो है ये लुब्बे लुबाब और खुलासा है, जो बात भी समझ में ना आवे वो आप अलग से फिर से कल पूछ लें, लेकिन अच्छी तरह उस पर तीन चार मरतबा आप नज़र डाल लें, जहन नशीन कर लें, ताकि किताबुल ईमान के मबाहिस में उलझन न होवे।